सामने जो बैठा हुआ है और बिल्डिंग जो है जो बढ़ा रही है बढ़ा रहा है वो बिल्कुल भी उसके नजरिया से बिल्कुल हम आ नहीं है। जो भी उनको कुछ और सीखना चाहती है या चाहते हैं वो कैसे डिस्कस करता है, कैसे इन चीज़ों को बढ़ा सकता है।
दो चीज़ें जिसको मैंने पहले डिस्कस किया, एक मुल्क का तालीमी निज़ाम है या आपकी यूनिवर्सिटी का तालीमी निज़ाम है, जो फिलहाल हमारे मौजूद नज़र नहीं है, उसको डिस्कस नहीं कर रहे। लेकिन हम जिस चीज़ को बेहतर बना सकते हैं वो खुद हम हैं, हमारे फिक्र है, हमारी हिम्मत और हौसले। अगर आप अंदर से मजबूत हैं, अंदर से बामकसद हैं, अंदर से जीदार हैं और अंदर से मैं कहूँ बहुत ही आसान जबान में तप्पड़ वाले हैं, ठीक है ना, कुछ करने वाले हैं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं। ठीक है कि आप जो कुछ भी आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है और आपका टीचर आपको लेक्चर दे रहा है वो एक सिस्टम का हिस्सा है कि जिसमें आपने आना है, शिरकत करनी है, उसको याद करना है, नोट करना है और उसके मुताबिक आपने एग्जाम देना है। लेकिन जो चीज़ आपकी शख्सियत बना रही है, जो चीज़ आपका किरदार बना रही है, जो चीज़ आपकी नज़रियात को पुख्तगी अदा कर रही है वो खुद आप हैं, आपके नज़रियात। लिहाजा अगर आप ये देखते हैं कि वो चीज़ मतलब आप इस्लामी लर्निंग में, हिस्ट्री में, जिसमें भी हैं, जिस शोबे में भी हैं, वहाँ रहते हुए आप अपने नज़रियात को जितना पुख्ता कर सकते हैं, कुरान से उसकी तस्दीक ले सकते हैं। आप तारीख के तालिबे इल्म मिसाल के तौर पर तो आप देखिए कुरान या तारीख के बारे में क्या कहा, आप खुद एक रिसर्च हो सकती है, ये चार पाँच साल जितने साल भी आप मसलन इस यूनिवर्सिटी में हैं, इस शोबे में हैं, आप ये देखिए कुरान या तारीख के अनुसार से क्या कहता है, खुद आपको तकबीत मिलेगी, आपके नज़रियात को तकबीत मिलेगी, खुद आपकी एक रिसर्च होगी जनाब कुरान में तारीख का ये किरदार है, कुरान ने तारीख को इस तरह पेश किया है मिसाल के तौर पर, ठीक है ना। और ख़ुद ये चीज़ आपको मोटिवेट करेगी, आपकी तशवीर करेगी, तरजीब दिलाएगी, शौक दिलाएगी कि आप अपनी अपने हदफ के हुजूर की कोशिश। मैं तालीमी निज़ाम पे फिलहाल बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सी चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं है। कोई और सवाल?
मेरा नाम अभी बत्ती है, सोशियोलॉजिस्ट में तालुक है। जैसा कि आपकी लेक्चर से काफ़ी हद तक मैं मुस्तफ़ीद हूँ, आप सारे ही मगरिब की जो कंट्रीज में अभी हम तालीम की जो बात करते हैं वहाँ के रुझानात से, तो वहाँ की तालीमी निज़ाम मुकम्मल तौर पर हमारे स्तर से मुख्तलिफ हैं। लेकिन वैसे भी मुसलमान हैं, हमारी आईमाई ग्राम और जितने भी असाफ गुजरे हैं उन्होंने बड़ी जोर की तालीम पर, उसके बावजूद भी पाकिस्तान 60 साल गुजरने के बावजूद अब तक गरीब लोगों को तालीम हासिल करने में नाकाम रही। यहाँ पर IDA और दीगर इंस्टीट्यूट सर्विस के बारे में गरीबों की बस की बात नहीं कि वाला तालीम हासिल कर सके, मुस्तकबिल में भी इसकी कोई उम्मीद नहीं नजर नहीं आई। एज ए स्कॉलर आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्तों में हम मगरबी मतलब सुर खिलाफ खुदे नारे लगाते ही रहेंगे या मुल्की सतह पर तालीम हासिल करने के लिए कुछ निचली सतह से कुछ इकदाम करने में भी पाकिस्तान कामयाब हो सके? थैंक यू।
देखिए बड़ा एक अमूमी किस्म का सवाल है और मैं ये चाहूँगा आप दोस्तों से कोशिश ये करें कि जो आपकी जिम्मेदारियों के मुताबिक सवाल हो सकता है वो करें। बहरहाल आपके सवाल का जवाब देता हूँ, वो ये कि हम मुसलमान जो है ना इस ज़ोम और इस गुमान में हैं कि हम मुसलमान हैं या हम सुन्नी हैं तो फलाँ के मानने वाले, हम शिया हैं तो फलाँ के मानने वाले, हर कोई गलत तफरीक में बात कर रहा हूँ। मैं शियों इसलिए नहीं कि शियों की साइड लूँगा और उनको बस बहुत चढ़ा के पेश करूँगा, नहीं, सुन्नी है तो वो किसी और जोम में है, शिया तो किसी और जोम में, कि हम अहले बैत के मानने वाले हो, कहीं हम रसूलुल्लाह के और उनके असहाब के मानने वाले, सन्नत के पैरोकार हैं। हम मुसलमान की बदबख्ती यह है कि हमने कुरान को समझा नहीं, हमने कुरान को पढ़ा नहीं और अमल का दामन हमने छोड़ दिया। यही वजह है कि दुनिया की किसी भी इंस्टीट्यूट में आप ये देखें सिर्फ नज़रिया और थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती, सिर्फ प्रैक्टिकल ही पढ़ाया जाता है। कुरान हमें नज़रिए की भी दावत देता है और प्रैक्टिकल की भी दावत देता है, दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं चलती। जो नज़रिया जो थ्योरी आपके जहन में है उसको प्रैक्टिकल में लेकर आओ, तब जाके वो एक नज़रिया बनेगा, तब जाके वो एक दुनिया की इल्मी महाफिल में, दुनिया के इल्मी मैदानों में जाके उसको उसका लोहा माना जाएगा। हम मुसलमान क्योंकि हमारे जहन में ये है कि और ये खुद एक साजिश है कि जनाब बस दुआ कर लीजिए सारे मसाइल हल हो जाएंगे, वो अकबर इलाहाबादी का शेर है वो पूरा मुझे याद ही उसका खुलासा ही है। तो वो लेटे लेटे दुआ करें कि जर्मन की तोपों में कीड़े पड़े होंगे, मुसलमानों का काम ये था कि वो लेट के फिर दुआ करते थे, वो समझते दुआ से सारी दुआ से तकदीर बदलती है, लेकिन कौन सी दुआ से, सिर्फ दुआ से ही, दुआ के बाद अमल की भी जरूरत है। देखिए दुआ कभी भी अमल की और अमल कभी दुआ की जगह नहीं थी, ये दोनों साथ साथ ये दोनों पर हैं जिनकी वजह से इंसान परवाज कर सकता है। लेकिन हम मुसलमान हमेशा हमने दीन का वो नाकस तसव्वुर अपने ज़हन में डाला हुआ है कि जनाब दुआ काफी है, अगर दुआ करते हैं और कोई असरात हमें उसके अच्छे नजर नहीं आते, तो उसके लिए जरूरी है कि फिर हम दीन फहमी को, कुरान फहमी को और मजहब फहमी को दोबारा सीरियस अंदाज से समझें, दीन का पैगाम क्या है, तब जाकर हम ये कर सकेंगे। और इसके लिए हमें एक तहरीक चलाने की जरूरत होगी, हमें एक मूवमेंट चलाने की जरूरत होगी कि हम तमाम अफराद मिलकर इस बीमारी को जो इस वक्त कौम की जड़ों में पहुंच चुकी है, रुपए में खून दाखिल हो चुकी है, उसको रोकें ताकि हम नजरियाती तौर पर और अमली दोनों तौर पर, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों मैदानों में सामने आ सके, तब जाकर हम मगरब का मुकाबला कर सकते हैं, बल्कि उसको भी बीट करते हुए शिखर से तो आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मैंने कहा पोटेंशियल बहुत है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है हमारे मुल्क में, इस धरती में, इस जमीन में, इन नौजवानों में, लेकिन उसको सामने आने नहीं मिलेगा। तो हमें एक दफा फिर दीन फहमी को, कुरान फहमी को सामने रखना चाहिए। और ये देखें ये चीज सिर्फ और सिर्फ दीन के साय में, मगर इस बात की दोबारा आपने बात कहते हैं, दीन के साय में इंसान इंसान का नहीं बन सकता, दुनिया के दूसरे ऐसे दुनिया के दूसरे नजरियात इंसान को इंसान नहीं बना सकते, वो इंसान को ओटी और रोटी का इंसान बना सकते हैं, इंसान को इंसान नहीं बना सकते।
क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान के अंदर स्पेशली जो है मैनेजमेंट साइंसेस के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट जो है जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी जो है ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, वो जो है जाते हैं कॉमर्स की तरफ, डी जी डी वगैरह करते हैं, जाते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट से और हायर सेकेंडरी इंस्टीट्यूट से। तो जैसे कि जामा कराची से भी जो है जामा कराची में भी ऐसे डिपार्टमेंट की जो है डिमांड ज़्यादा है, तो ये ऐसे स्टूडेंट जो है जब यहाँ से पास आउट होते हैं जाते हैं मल्टीनेशनल कंपनी पे और ये मल्टीनेशनल कंपनी का हिस्सा बन जाते हैं, तो इसे सुबह जाते हैं और रात को जो है वहाँ से वापस आ जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट क्या जो है ऐसे जो है इंडिविजुअल लोगों के उनके दौर में क्या गुजारा कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं।
देखिए इस्लाम जो है दीन और कुरान जो है हमें अपनी यूनिट को, अपनी इकाई को, अपने वजूद को काफी रहने का सबक मिलता है। असल में क्या है तो वाकई आपने सुना है वो जिन्होंने कार में जाके पना ली थी 300 साल तक उनको मौत है, उसके बाद दोबारा जिंदगी अच्छी के दोबारा मौत है। इन्हें अपनी यूनिट को, अपनी इकाई को, अपने वजूद को तस्लीम करना, उसको महफूज रखना, ये वो कुरानी तस्वुर है असहाब कहफ का। 6-7 असहाब जो थे नौजवान थे, उन्होंने अपने वजूद को तस्लीम किया, अपनी सलाहियत पर यकीन किया और अपने वजूद को बाकी रखा। उन्होंने कहा हम इस कहते हुए दरिया में गुम नहीं होना चाहते, डूबना नहीं चाहते, गर्क नहीं होना चाहते। इलादीनियत का समंदर है कि बुत परस्ती का और शिर्क परस्ती, शिर्क का समंदर है, डूबना नहीं चाहते। इस वक्त जो कुछ हमारे मुल्क की या तालीमी निज़ाम की या जॉब की जो सूरत हाल हैं, रोजगार के जो मौके हैं, उन सबको सामने रखते हुए हमें अपने मकसद को सामने रखना है। अगर मकसद आपके सामने होगा तो आप कभी गुमराह महरूम नहीं कर सकते। जो आप देखते हैं कि शहरों के दरमियान हाईवे पर साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, संगीनियाँ जिनको उर्दू में कहते हैं, ये इसलिए होते हैं कि आपको राह महरूम नहीं कर देते, बताते हैं आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपका फासला कितना अपने शहर से रह गया है और आप कितना फासला तय कर चुके हैं। आप किसी भी कंपनी में जाएं, आप किसी भी शोबे में जाएं, हाँ वो सरकारी महकमा हो या प्राइवेट आपकी जॉब हो, कोई भी हो, लेकिन अगर आपका मकसद, आपका हदफ पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान का इस्तेकाम, पाकिस्तानी कौम को फलाह और बहबूदी से हमकिनार करना, इंसानियत की खिदमत है, तो फिर आप कभी भी अपने मकसद को गुम नहीं करेंगे। अगर आप रात में भी देर से आते हैं तो एक मकसद है आपके पास, एक हदफ है आपके पास। इसीलिए हदीस में के मोमिन खुदा का नेक बंदा अपने औकात को 3 हिस्सों में तकसीम करता है, 8-8 घंटे में, माश के लिए, हलाल से लज्जत के लिए और इबादत के लिए। تین سب تقسیم کرتے ہیں. ممکن ہے کہ یہ ادھر سے کاٹ کر آپ تھوڑا سا وقفہ معاش کو دے دیں, ادھر سے مثلا گھر والوں سے کاٹ کر عبادت کو دے دیں, عبادت سے تھوڑا سا کاٹ کر آپ جو ہے وہ معاش کو دے دیں. یہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے, لیکن بنیادی طور پر اگر یہ ہدف ہے کہ اپنے علم سے, اپنے ریسرچ سے, اپنے نالج سے, جو کچھ بھی ہم نے حاصل کیا اس ملک کی جامعات میں اور یونیورسٹیز میں, جو کچھ میں نے ڈگری حاصل کی ہے, جو کچھ مجھے فن حاصل ہوا ہے, میں اسے انسانیت کی, پاکستان کی, ملک و قوم کی خدمت کروں, اور یہ مقصد اگر آپ کا ہے تو آپ کا سونا, آپ کا جاننا, آپ کا اگر رات میں بھی آتے ہیں, دیر سے بھی آتے ہیں, وہ بھی بات ہے. لیکن اگر مقصد گم ہو جائے تو ایسے ہی کہ جیسے آپ سمندر میں کھڑے ہوں اور آپ کی سمت تعین نہ ہو, ریگستان میں کھڑے ہوں, صحرا میں, جہاں پر سمت تعین ہو, تو آپ حیران اور پریشان ہونے میں کام کریں. تو اسلام ہمیں کہتا ہے کہ اپنی یونٹ کو, اپنی اکائی کو, اپنے وجود کو باقی رکھو, اپنے ہدف کو سامنے رکھو, پھر کبھی راہ گم نہیں کریں.
سر بہت سے تاجر خصوصاً یہاں بیٹھے ہوئے تاجر ایسے ہیں جو سر سیاسی شعبوں بھی رکھتے ہیں اور سر جنرل نالج بھی رکھتے ہیں, لیکن سر وہ یوٹیلائز نہیں کر پا رہے. سر کچھ
اپنے سوال تھوڑا سا اور بولیے.
سر آپ نے بیان کیا کہ سر اسٹوڈینٹس میں سیاسی شعور ہونا چاہیے, سر جنرل نالج ہونی چاہیے اس کے پاس, اور سر کیا کہتے ہیں انالائزنگ پاور ہونی چاہیے. تو سر یہاں پہ بیٹھے ہوئے اور نارمل اسٹوڈینٹس دیکھ کے جاتے ہیں کہ سر ان کے پاس کافی ہے, جنرل نالج ہے سر ان کے پاس, ویژن بہت براڈ ہے, لیکن سر وہ یوٹیلائز نہیں کر پاتے.
میں وہی کہوں گا, دیکھیں ویژن کا ہونا کافی نہیں ہے, افق کا وسیع ہونا کافی نہیں ہے, اور معلومات کا زیادہ ہونا بھی کافی نہیں ہے. ان سب کو ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. ایک بات جو میں شروع میں کہنا چاہتا ہوں, میں ذہن سے نکل گئی تھی, جو میں کہہ رہا تھا کہ آپ اپنی صلاحیتوں کا اور اپنی عادات و اطوار کا پتہ ہونا چاہیے. بہت سے انسان ہوتے ہیں جن کی صلاحیتیں ظاہر نہیں ہو پاتی, مر جاتی ہیں اندر ہی, خواہ وہ ہمارا تربیتی نظام ایسا ہو پاک و ہند کا, ہماری سوسائٹی کا, یا ہمارے ملک کا مجموعی نظام ایسا ہو. بعض اوقات صلاحیتوں کو موقع ملتا ہے پروان چڑھیں, لیکن میں نے کہا تھا صحیح ڈائریکشن میں نہیں ہوتی, صحیح سمت میں نہیں ہوتی. بعض اوقات جو سمت آپ کیا, آپ کو وہاں نہیں جانا, لیکن آپ وہاں قدم اٹھا رہے ہیں, آدھا راستہ گزرنے کے بعد جب جناب سی این جی پی کے بٹھا گئی ہے اور واپس لوٹیں گے تو گاڑی اپنے منزل تک اور مقصد تک نہیں پہنچ سکے گی. کہنے مقصد کہ ویژن کا ہونا, افق کا وسیع ہونا, معلومات کا زیادہ ہونا کافی نہیں ہے. اگر یہ تمام چیزیں آپ کی, آپ کا ویژن, آپ کا ہدف, آپ کا افق, آپ کی معلومات اور آپ کی صلاحیت اگر ایک مقصد کے لیے ہیں, ایک مقصد اور ایک راہ میں آپ قدم اٹھا رہے ہیں, تو سمجھ جائیے کہ آپ بہتر اور کامیاب انسان بن سکتے ہیں. لیکن اگر یہ مختلف راہوں میں بٹے ہوئے اور مختلف حصوں میں آپ کی فکر منحرف ہو گئی ہے, تو آپ کی ذہنی صلاحیتوں, تخلیقی صلاحیتوں کو جمع نہیں کر سکتے آپ. تو آخری بات یہ کہ جو کچھ بھی ہے ان کو ایک مقصد کے لیے استعمال کریں. وہ مقصد خدا ہے, وہ مقصد انسانیت کی خدمت ہے, وہ مقصد دین کی خدمت ہے, اور وہ مقصد اپنی پاکیزہ زندگی کی خدمت ہے. اس نیت سے اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لائیں, اپنی جامعات میں مضبوط, مثبت اور بہتر کردار ادا کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ دوسرے نوجوان کو, دوسرے طالب علم کو, دوسرے طالبات کو جہت دے سکیں, ڈائریکشن دے سکیں, بتا سکیں. لیکن اس کے لیے طالبات بننے کی ضرورت نہیں ہے, جنہیں ڈنڈے لے کھڑے ہو جائیں گے, جنہیں پردہ کرو گے تو آؤ گے, پردہ نہیں کرو گے تو نہیں آؤ گے, داڑھی رکھو گے تو آؤ گے, داڑھی یہ نہیں, بلکہ اخلاق سے, پیار سے, محبت سے, رواداری سے مدارہ کرتے ہوئے جو ایک انسانی طریقہ کار ہوتا ہے, اس کے تحت دوسروں کو دعوت دیں, دعوت فکر دیں, دعوت تعقل دیں, تاکہ دوسری تنظیمیں آپ کی انتظامیہ, طلبہ انتظامیہ, طلبہ انتظامیہ کے جو طلبہ عموم کے جو بھی آپ کے سربراہ افراد ہیں, جو ذمہ دار افراد ہیں, سب مل کے بیٹھیں اور آپس میں مل بیٹھ کر ہم اپنی صلاحیتوں کا یقین کریں اور اس کو, اس ملک و قوم, انسانیت اور مسلمانوں اور اپنے اسلامی معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے بڑے کار کر سکیں.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد. ہم انتہائی شکر گزار ہیں حجت الاسلام مولانا سید صادق قضا تقریر کے کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے ہمارے لیے کچھ وقت نکالا, اور ساتھ ہی ہم معذرت کا بھی ہے کہ پروگرام وقت پہ شروع نہیں ہو سکا تھا, لہٰذا ایک بار پھر ہم اس سے معذرت کرتے ہیں. آخر میں اختتامی کلمات اور دعا کے لیے میں گزارش کروں گا مانیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پاکستان کے برتری سینئر نائب صدر برادر رحمان شاہ سے.